surgió Me.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा और एआई शिखर सम्मेलन के समग्र विश्लेषण पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार शुभाजीत रॉय, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा आज खत्म हो गई है, जिसके बाद वे अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी की फ्रांस यात्रा के महत्व और परिणामों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री शुभजीत रॉय। शुभजीत जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी नमस्कार।
शुभजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा खत्म हो चुकी है, इस यात्रा की मुख्य बातें क्या रही हैं?
आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा किए थे जुलाई 2023 में, उनके नेशनल डे जो बैस्टिल डे कहलाता है उसके लिए, और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन 2024 में वो रिपब्लिक डे, हमारे जो गणतंत्र दिवस है उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, और उसके बाद ये जो विजिट है, ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो पेरिस में हुई है अभी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर एज को चेयर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन ने न्योता दिया था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो भारत के जो विचार है, स्पेशली कि यहाँ कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, और यहाँ पर डीप फेक के खिलाफ क्या मुख्य फ्रेमवर्क होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्ताव रखे, और यह भी कहा कि भारत अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को होस्ट करना चाहता है। तो इस साल के अंत में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होस्ट करेगा, ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन का भी गठन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसको कि माना गया सभी देशों के द्वारा। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के लीडर हैं वो इकट्ठा उन्होंने फ्रांस में पेरिस से लेकर के मार्सेई तक, जो कि एक फ्रांस के तट पे एक शहर है, वहां पर दोनों इकट्ठे एक ही हवाई जहाज में, फ्रांस के राष्ट्रपति के हवाई जहाज में दोनों इकट्ठे 30,000 फीट के ऊंचाई पे अपना बायलैटरल जो मीटिंग था, जो बैठक थी, उसको जारी रखा, और फिर उस दौरान उन्होंने ये तय किया कि दोनों देश सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी आगे बढ़ेंगे।
जी, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो इंटरनेशनल समिट हुई है उसकी बात की, उसमें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों और प्रतिभाओं को एक साथ लाने की बात की, उन्होंने ओपन सोर्स जेनरेटिव एआई सिस्टम विकसित करने की बात की, और उन्होंने पूर्वाग्रहों से मुक्त डेटा सेट बनाने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। ऐसे समय में जब चीन का कम लागत वाला ओपन सोर्स डीप सीक मॉडल एआई उद्योग में एक डिसरप्टर बन गया है और पश्चिम की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को चुनौती दे रहा है, आप प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं?
जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को सामने रखा है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक वेस्टर्न मॉडल जो कि यूएस लीड कर रहा है, अमरीका लीड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी ओर चीन डीप सीक के जरिए अभी उस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो भी आगे बढ़ के कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक रेस चल रहा है दोनों देशों के बीच में। इसमें भारत और फ्रांस का ये मानना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी नए रूल्स बने जाएं वो सबको लाभ करे। तो जो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, एंड फॉर अ पब्लिक गुड, फॉर ग्रेटर गुड, मतलब सभी के भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज की डेट में जो वैश्विक स्थिति है, जहां पे दोनों तरफ इसके बारे में इसके काफी डिस्ट्रक्टिव और काफी वेपनाइज्ड वे में यूज करने की बातें चल रही है एआई का, और इस तरह का डिसरप्शन होने वाला है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो मुख्य बात है कि ग्लोबल साउथ यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो 110-120 कंट्रीज जो माने जाते हैं जो डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके फायदे के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिशा है, एक सोच है, एक विचार है जो प्रधानमंत्री ने भारत के तरफ से रखने की कोशिश की है।
फ्रांस भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है जो लड़ाकू जेट, पनडुब्बियां और मिसाइल तकनीक की आपूर्ति करता रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंच आर्मी को भारत में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई पिनाका मिसाइल लॉन्चर को देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पिनाका मिसाइल है, अगर ये फ्रांस की आर्मी में शामिल हो जाती है तो इससे भारत और फ्रांस की जो रक्षा के क्षेत्र में जो उनकी साझेदारी उसको एक नए आयाम मिलेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं?
जी देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस का जो सहयोग रहा है वो बहुत ही पुराना है। पिछले 40-50 साल में हमने देखा है, फ्रांस ने जब भी भारत को जरूरत पड़ी है तब वो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किया है। और पिछले सालों में हमने देखा है जैसे रफाल जेट विमान है और आपका जैसे स्कॉर्पिन जो सबमरीन है, इन सब में बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध रहा है। और इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए और भी ये पिनाका का नाम लिया। इसी तरह रफेल नेवी के लिए जो रफेल के इस्तेमाल की जा सकती है उस पे भी चर्चा की जा रही है। उसको भी भारत चाहता है कि वो कम से कम दाम में और जल्दी से जल्दी भारत के पास ये रफेल एयरक्राफ्ट आए। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो फ्रांस देता है और कोई और देश देने को राजी नहीं है, वो है कि टेक्नोलॉजी जो यूज किया जाता है वो टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर किया जाए और भारतीय सेना को इसमें ट्रेन भी किया जाए। सिर्फ ट्रांसफर ही ना किया जाए बल्कि ट्रेन भी किया जाए, और इसमें फ्रांस जो है काफी बढ़ चढ़ के मदद करने को तैयार है। ये सबसे ज्यादा मुख्य कह सकते हैं बिंदु है दोनों देशों के बीच में सहयोग के बारे में।
द्विपक्षीय वार्ता की अगर हम बात करें तो 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सुधारों के बारे में बताया और उन्होंने फ्रांसीसी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर पावर की बात करते हुए ये भी कहा कि इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है।
2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। हम एसएमआर और एएमआर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।
इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है वो अब निजी भागीदारी के लिए वो खुल चुका है। इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और जो मौजूदा सहयोग के क्षेत्र हैं व्यवसाय की बात करें उनमें कहाँ विस्तार हो सकता है और कौन से नए व्यवसाय के अवसर हो सकते हैं?
जैसे मैंने पहले कहा कि सुरक्षा यानी डिफेंस और इसमें जैसे सहयोग रहा है भारत और फ्रांस के बीच, इसी तरह दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर पे भी सहयोगिता रही है कई दशकों से। और आपको पता है 2008 में भारत और फ्रांस के बीच में एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी हुआ और उसके तहत एक जैतापुर जो कि महाराष्ट्र में है उसमें एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने की बातचीत चल रही है। ये एक बहुत लंबा और एक कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है जो कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब एक नया आयाम जुड़ा है इस यात्रा में कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी छोटे रिएक्टर्स को दोनों देश मिलके को प्रोड्यूस करें, यानी मिलके बनाने की कोशिश करें और उसको वो कोशिश करें कि उस दिशा में दोनों लीडर्स ने कहा है कि मिलके काम करना चाहिए। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक अग्रीमेंट है, इस समझौता है जो कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अग्री किया है। और मुझे लगता है कि ये एक नया एक आयाम होगा, एक नया डायमेंशन होगा दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन का स्मॉल और मीडियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के तरफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को अब प्रोत्साहित कर रहा है।
हमने भारत में AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को FDI के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है।
अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मासिया में एक कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस तरह के जेस्टर्स भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक संबंधों की गहराई को कैसे दर्शाते हैं?
जी, आपको पता होगा जैसे भारतीय सैनिक बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे और उन्होंने इस चीज को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए इन वॉर सिमेट्री में जा करके दोनों देशों के लीडर जो है उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और मार्सेई एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फ्रेंच पोर्ट सिटी माना जाता है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा सबमरीन केबल्स वहां पर आते हैं और वो ये सबमरीन केबल्स जो है हमारा जो इंटरनेट और टेलीफोन लाइंस जो चलते हैं उसमें मदद करती हैं ये सबमरीन केबल्स। सो उस हिसाब से मार्सेई में एक कॉन्सुलेट का खोलना, जो कि भारत का इंडियन एम्बेसी पेरिस के अलावा पहला कॉन्सुलेट है फ्रांस के मेनलैंड में, एक रियूनियन आइलैंड में ऑलरेडी है पर ये फ्रांस के मेनलैंड में पहला कॉन्सुलेट जनरल खोला गया मार्सेई में, जहां पर और वहां के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वहां के जो भारतीय समुदाय है उनके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट कदम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और एक स्ट्रेटेजिकली भी मार्सेई का जो शहर है फ्रांस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नेवल बेस है जो तुलों में है, उसके पास है, तो स्ट्रेटेजिकली डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिए डिप्लोमेटिक पोस्ट होगा, जहां पर भारत और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक संबंध को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।
अपनी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों ने कई विषयों पर बात करी, जिसमें से एक विषय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर भी था और दोनों ने ही इसकी जो जरूरत है उस पर बल दिया। साथ ही फ्रांस ने दोबारा एक बार फिर भारत के लिए सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की बात को, अपनी जो उनका समर्थन है उसको दोहराया। इसको आप किस तरह देखते हैं, खासकर अब जब भारत एक विश्व पटल पर एक बहुत ही बड़े और एक विकसित देश के रूप में उभरने की तैयारी में लगा हुआ है?
जी, फ्रांस जो है बहुत ही पहले से पहला परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि इंडिया के लिए के परमानेंट मेंबरशिप के सपोर्ट में स्टेटमेंट पोजीशन रखा है और ये चीज उन्होंने बार बार दोहराया है और इस बार भी वो लोग इसी चीज को इमैनुअल मैक्रॉन ने, द फ्रेंच प्रेसिडेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट ने दोबारा से इसको दोहरा करके भारत का जो ये एस्पिरेशन है UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, उसमें उन्होंने उसको और जोर दिया है।
मिस्टर रॉय, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा और AI शिखर सम्मेलन के समग्र विश्लेषण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शुभाजीत रॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में